ओम शांति। दो घटनाओं से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। पहली, चीन में एक बहुत बड़े दार्शनिक कवि हुए थे चांग त्सू, ईसा से पूर्व। उसने लिखा है एक मंकी ट्रेनर के बारे में, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे बंदर थे और बंदरों की भाषा वो जानता था। उसका यह नियम था कि वो रोज सुबह बंदरों को 4 रोटियां देता था और शाम को 3 रोटियां। यह क्रम चालू था और लंबे समय तक चालू था। एक दिन या एक समय चीन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, फसल इतनी नहीं उगी। इस वजह से एक दिन उसने बंदरों को 4 की बजाय 3 ही रोटियां दी सुबह सुबह। तो बंदर बहुत ही नाराज हो गए, नाखुश, अप्रसन्न, बिल्कुल रूठ गए, बात नहीं करने लगे, यहां वहां देखने लगे। तो उसने समझाने की कोशिश की, परंतु वो बंदर बिल्कुल नहीं माने, बहुत ही ज्यादा नाराज थे। तो उसने क्या किया, सुबह वो रोज बंदरों को 4 रोटियां देता और शाम को 3। उस दिन 3 रोटियां सुबह दी तो बंदर बहुत नाराज हुए, इसलिए उसने क्या किया, 4 रोटियां शाम को दी। परंतु जैसे ही 4 रोटियां बंदरों ने देखी, बंदर फिर नाराज हो गए, क्योंकि रोज उन्हें शाम को 3 मिलती थी। तो वो बंदर बहुत ही नाराज हो गए, बिल्कुल मुंह बनाने लगे। उसके दूसरे दिन सुबह उसने फिर बंदरों को वापस सुबह 4 रोटियां दी तो बंदर बहुत खुश हो गए, उछलने लगे, गाने लगे, गुनगुनाने लगे। और शाम को उसने फिर 3 रोटियां दी तो बंदर और खुश हो गए, जबकि उसके पहले दिन भी उसने टोटल कितनी रोटियां दी थी, 7 ही दी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? पहली कहानी यह, इस पर आएंगे थोड़ी देर के बाद। दूसरा, एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक एक बार एक बहुत बड़ा विचारक, फिलोसोफर, थिंकर, जो हर चीज के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही किसी चीज को छोड़ नहीं देते, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये प्रश्न निरंतर मन में घूमते रहते हैं। जीवन की हर घटना को देखते हुए, हर वस्तु को देखते हुए, ऐसा एक दार्शनिक एक तेली के दुकान में गया तेल लेने के लिए। और जब उस तेल वाले से बात कर रहा था तो आश्चर्य हुआ देखकर कि पीछे एक बैल है जो घूम रहा है, कोलू का बैल, गोल 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 घूम रहा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे कोई हाँक नहीं रहा था, वो अपने आप ही घूम रहा था। तो उसने उस तेल बेचने वाले से पूछा, इसे कोई हाँक नहीं रहा है, कोई मार नहीं रहा है, कोई फटकार नहीं रहा है, फिर भी ये अपने आप कैसे घूम रहा है? तो वो तेली कहता है, देखते नहीं इसके आंखों के बाजू में पट्टी लगी हुई है, इस वजह से वो देख नहीं सकता पीछे। फिर भी दार्शनिक तो दार्शनिक है, वो कहता है चलो घूमते घूमते पीछे नहीं देखता मुड़कर, कभी रुक कर तो पीछे देख सकता है कि कोई मारने वाला है या नहीं। तो वो तेली कहता है, क्या मुझे तुमने बुद्धू समझ रखा है? इसके गले में क्या लगी हुई है? घंटी लगी हुई है। ये घंटी की आवाज सुनता है और उसको लगता है जैसे कोई पीछे है जो उसे हांक रहा है। इस वजह से वो घूमते ही रहता है और घूमते ही रहता है। फिर भी दार्शनिक कहता है कभी ऐसा नहीं हो सकता है, होता है कि ये बैल जो है रुक जाए और घंटी हिलाए और उसे पता चल जाए पीछे कोई भी नहीं है। तो वो तेल बेचने वाला कहता है, आप यहां 2 पैसे का तेल लेने आए हो, मेरा धंधा मत चौपट करना। अगर ये बात बैल ने सुन ली, क्योंकि सत्संग संक्रामक होता है, कृपया कहीं और से तेल ले, मेरी दुकान छोड़ दे। मनुष्य जाति की भी कुछ ऐसी ही दशा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अज्ञान की पट्टी आंखों पर है, वो देहवान की घंटी और पीछे वो मारने वाला। वो तेली कहता है कि हाँ, जैसे ही वो घंटी बजना बंद हो जाती है, कभी कभी मैं पीछे से जाकर उसको मार देता हूं और उसे लगता है कि जैसे पीछे निरंतर कोई है। उसे ये पता ही नहीं चलता है उस बैल को कि पीछे कोई नहीं है, परंतु जैसे ही, क्योंकि घंटी बज रही है, वो देख नहीं सकता। ऐसी ही मनुष्यता की भी दशा है, जहां आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, देख नहीं सकते। गले में जैसे देहभान की वो आंखों पर अज्ञान की पट्टी, गले में देहभान की घंटी और पीछे है रावण माया चाबुक लिए विकार, और वो घूमते ही रहता है और घूमते ही रहता है और घूमते ही रहता है। एक ऐसा अधीनता का उसका जीवन है, उसे पता ही नहीं मुक्ति क्या होती है। और उसकी इस स्थिति में यदि कोई खलल डाले तो बहुत नाखुश हो जाता है उन बंदरों की तरह। उसे वैसा ही चाहिए जो बनी हुई दिनचर्या है, उसमें यदि कोई थोड़ा भी बदल करे तो बहुत नाखुश हो गए, नाराज हो गए वो बंदर, क्योंकि उन्हें वैसे ही जीवन जीने की आदत पड़ी हुई है। उसमें थोड़ा भी परिवर्तन, थोड़ा भी चेंज अगर कोई करता है तो विद्रोह करता है चित्त। वैसी ही दिनचर्या, वही अमृत वेला, उसमें कोई नया उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, वही मुरली सुनने और सुनाने का ढंग, वही दिनचर्या, वही वार्तालाप, वही मन की स्थिति, सब कुछ वही। जैसे ही उसमें थोड़ा भी बदल किया जाए वैसे ही आंदोलन होता है, जैसे मन में। तो ऐसी मनुष्यता की स्थिति है, जो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कोई नवीनता नहीं, एक आंतरिक उदासी। इसलिए एक मुरली में बहुत सुंदर पॉइंट आई है आज, अधीनता के संस्कार। क्या करो, इसको समाप्त करो। डिपेंडेंसी, किन किन चीजों पर हम निर्भर है, जहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अधीनता के ही संस्कार हमारे परिवर्तन में जैसे बाधा है। कौन से अधीनता? शारीरिक हो सकती है, बौद्धिक अधीनता हो सकती है, भावनात्मक अधीनता हो सकती है, आर्थिक अधीनता हो सकती है, सामाजिक अधीनता हो सकती है, आध्यात्मिक अधीनता भी हो सकती है। बाबा ने कहा है, पवित्रता की शक्ति से तुम क्या कर सकते हो, या राज शक्ति, राज सत्ता, जो राज सत्ताधारी आत्माएं उनके कर्तव्य सुनाए हैं बाबा ने, और एक कर्तव्य उसमें से है अटल और अखंड राज्य। उस राज्य में अटल और अखंड हो, अधीनता और कभी अधिकारी ऐसा नहीं, निरंतर अधिकारी, ऐसी राजसत्ता वाली आत्माएं हम हैं। और दूसरी बात पवित्रता की, तो आज दो बातों पर चर्चा करेंगे, एक तो राजसत्ता और दूसरी धर्मसत्ता। धर्मसत्ता अर्थात, धर्मसत्ता अर्थात धारणा की शक्ति। कितना सुंदर शब्द है धारणा की शक्ति। जो आत्माएं धारणाएं करने लगती है, आत्मा में धारणा के संस्कार भरते जाते हैं, अपने आप पावर आती जाती है। जो भी ईश्वरीय जीवन की धारणाएं हैं, जैसे जैसे यथार्थ विधि से पालन करती जाती है आत्मा, सिद्धि को प्राप्त होती है। तो धारणा की शक्ति धारण करने वाली धर्मसत्ता धारी आत्मा। और सबसे बड़ी धारणा इस जीवन की कौन सी है, पवित्रता की धारणा। पवित्रता ही लाइट का क्या है, क्राउन है। पवित्रता ही पिलर है। क्या किया है इस पिलर ने, क्या किया है, इस सृष्टि को थमाया है, इस सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमाया है, थमा सकता है। तो पवित्रता की शक्ति, पवित्रता का बल, यह धर्म सत्ता की निशानी है। सर्व गुणों में संपन्न होना, यह धर्म सत्ता की निशानी है। परिवर्तन, वो भी तीव्र वेग से परिवर्तन, यह पवित्र, यह धर्म सत्ता की निशानी है। परिपक्वता, यह धर्म सत्ता की निशानी है। निर्माणता, यह धर्म सत्ता की निशानी है। तो पवित्रता क्या क्या करती है, परम पूज्य बनाती है। टोटल 7 पॉइंट्स बाबा ने सुनाए हैं पवित्रता के विषय में, एक एक पॉइंट हम लेंगे। सबसे पहला, पवित्रता क्या करती है, परम पूज्य बनाती है। कैसे, क्योंकि नई दुनिया की जो स्थापना है किस आधार से है, पवित्रता के बल से और योग के बल से। तो हम क्या बन जाते हैं, परम पूज्य, परम पवित्र बन जाते हैं। उसका आधार पवित्रता है। दूसरा क्या करती है, इस पतित सृष्टि को परिवर्तन कर देती है। सृष्टि को परिवर्तन करने वाली जो शक्ति है वो पवित्रता है। पवित्रता ही सर्वोच्च धारणा है। पवित्रता ही रॉयल्टी है। पवित्रता ही लॉयल्टी है। पवित्रता ही ब्यूटी है। पवित्रता ही पब्लिसिटी है। पवित्रता ही सिंप्लिसिटी है। ऐसी प्यूरिटी की महिमा है। जो भी धर्म की स्थापना हो रही है, इतना सर्वश्रेष्ठ धर्म, उसका आधार यह पवित्रता है। कहां तक इस पवित्रता के धारणा स्वरूप बने हैं, कहां तक ये पवित्रता हमने अपने जीवन में धारण की है, कहां तक इस पवित्रता को अपने निजी संस्कार के रूप में पहचाना है, जाना है, समझा है। क्या यह ब्राह्मण जीवन जीते हुए अब भी मन में अपवित्रता के संस्कार, अपवित्रता के संकल्प आते हैं, क्या वही विकार की भावनाएं उठती है? बाबा ने संपूर्ण अपवित्रता की बहुत ऊंची परिभाषा दी है, परंतु उसका फिर भी जो बेस है, जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। वैसे तो संपूर्ण अपवित्रता में साधारण संकल्प भी अपवित्रता है। संकल्प, स्वप्न, दृष्टि, वृत्ति, सब में पवित्रता। जहां कभी बाबा ने एक बार कहा था कि इस यह पवित्रता जैसे सफेद कागज है, इसमें एक छोटा सा संकल्प भी क्या है, जैसे काला दाग है। ऐसे नहीं कह सकते कि थोड़ा सा है, थोड़ा नहीं है, कितना है, बहुत है। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज के साथ होगा। इसके लिए काम की चोट बहुत बड़ी चोट है। संकल्प में भी नहीं तो वृत्ति में भी नहीं। ब्राह्मण माना ही पवित्र, तो धारणा स्वरूप अर्थात संपूर्ण पवित्र स्वरूप, देह मन आत्मा जो है देह के तल से, उन विकारों के तल से बहुत ऊंची उठ गई है, तो ऐसी पवित्रता हमें धारण करनी है। यह पवित्रता परम पूज्य बनाती है, यह पवित्रता पतित सृष्टि का परिवर्तन करती है, यह पवित्रता और क्या करती है, जलती हुई आत्माओं को, किस में जलती हुई, विकारों में जलती हुई आत्माएं को क्या कर देती है, शीतल, शीतलता की जैसे किरणें, शीतलता की जैसे दा फुहारे, मनुष्य जैसे कहा उस कोलू की बैल की तरह घूम रहा है, अधीन है, विकार ग्रस्त है, अज्ञान की पट्टी है, देह भान की घंटी है और पीछे माया चाबुक लिए, यह उसकी स्थिति है। हमें अब इसको क्या करना है, उसे ज्ञान पवित्रता, इस आधार से उसे, अगला पॉइंट क्या है, जन्म जन्म के जो विकर्म है उसके बंधनों से छुड़ाती है। क्या करती है पवित्रता, विकर्मों के बंधनों से छुड़ाना आत्माओं को। एक तो है हम उसके लिए स्वयं अपने बंधनों से छूटे हुए हो, जो धारणा स्वरूप है वही धारणा स्वरूप बना सकते हैं, जिनमें स्वयं धारणा की शक्ति है वही दूसरों को धारणा की शक्ति दे सकते हैं, जिनमें स्वयं ही धारणाएं नहीं है, जिनकी पवित्रता स्वयं ही खंडित हो रही है बार बार, वो कैसे विश्व को पवित्रता का संदेश दे सकते हैं, जो स्वयं ही विकारों के गर्त में या फिर व्यर्थ और नकारात्मक भाव के गर्त में डूबे हैं, वो कैसे संसार को पवित्रता का सबक पाठ पढ़ा सकेंगे। अगला पॉइंट है, पवित्रता क्या करती है, नेत्रहीन को क्या करती है, तीसरा नेत्र, आंखों पर पट्टी बंधी है, पीछे देखती भी नहीं है, ऐसी दृष्टिबाधित आत्माएं, स्थूल आंख तो है परंतु वह तीसरी आंख, वह सूक्ष्म आंख, वो स्वयं को देखने की, जानने की, पहचानने की, वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आंख नहीं है, ये सत्य को स्वीकार करने की, जानने की आंख नहीं है कि भगवान धरती पर आ चुका है। आगे कहा ना सितम, आत्माएं क्या करती है, दूसरी सितम, ग्लानि विरोध, इसलिए तीसरा नेत्र पत्रण करती है ये पवित्रता, और क्या करती है, इस सृष्टि को थमाती है, ये जो मकान है उसको गिरने से थमाती है, नहीं तो कब का गिर जाता। बाबा साकार मुरलियों में कई बार सन्यासियों को याद करते हैं। और लास्ट लाइट का क्राउन, तो कल सुबह अमृत वेला बाबा के पास जाना और बाबा से वरदान लेना है परम पूज्य भव का, पवित्र भव का, और लाइट का क्राउन पहना लेना और अपनी आंखों के सामने यह दृश्य इमर्ज करना। एक तो अपवित्र सृष्टि जिसको हम दृष्टि दे रहे हैं और हमारी दृष्टि पड़ते ही यह पतित सृष्टि परिवर्तन हो रही है, दूसरा दृश्य आत्माएं तड़प रही है, जल रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है विकारों में, उन्हें हमें शीतलता की छींटे उनके ऊपर डालनी है, तीसरा आत्माएं विकर्मों के बंधन में है, हमारी दृष्टि उन पर पड़े और आत्माएं उन बंधनों से मुक्त हो जाए। चौथा, नेत्र नहीं है, हमारी दृष्टि पड़ते ही उनका तीसरा नेत्र जैसे खुल जाए। ऐसी कुछ आत्माओं को आंखों के सामने इमर्ज करना और उन्हें दृष्टि देना। तो धर्म सत्ता अर्थात पवित्र स्वरूप, धर्म सत्ता अर्थात सर्व गुण स्वरूप, और उसकी कुछ निशानियां बाबा ने बताई। पहली निशानी जैसे कहा, परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? पहले स्व का और फिर दूसरों का। उदाहरण दिया है, किन का उदाहरण दिया? जिन आत्माओं ने धर्मों की स्थापना की है। अगर इतिहास को देखा जाए द्वापर से अब तक, एक एक धर्मात्माएं आती गई, कभी कभी धर्मात्माएं, कभी कभी महान आत्माएं, जो जो सिद्धांत वो आत्मा लेके आई उसके पीछे सब हो लिए। अगर भारत की बात कहे तो महात्मा बुद्ध, जैसे ही वो आए लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और सब उनके पीछे चले गए। कुछ समय के बाद शंकराचार्य आए, बौद्ध को छोड़ दिया, उसके पीछे चले गए शंकराचार्य। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, एक एक करके आते गए, फिर भक्ति चालू हुई। तो जैसे जैसे नई नई आत्माएं आती गई, लोग परिवर्तन होते गए। तो ये शक्ति क्या करती है? स्व का परिवर्तन और औरों का परिवर्तन। और स्व का परिवर्तन कैसे करना है हमें, किस वेग से, किस गति से? आगे बोला एक जगह, तीव्र गति से, किसके जैसा? सूर्य की जैसा। सूर्य जैसा तेज है, चंद्रमा की तरह नहीं। पुरुषार्थ में शीतलता नहीं। अगर तीव्र वेग से परिवर्तन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? कमी रह जाएगी। और कमी रह जाएगी तो क्या हो जाएगा? कमानधारी बन जाएंगे, छत्रधारी नहीं, सूर्यवंशी नहीं। तो तीव्र वेग से परिवर्तन, पहले स्वयं का और फिर ही दूसरों का। तो अपने परिवर्तन की प्लानिंग करनी है। पहले तो किस बात में परिवर्तन करना है? और यहां पवित्रता की बात चल रही है। क्या अब भी पवित्रता खंडित हो रही है? और यदि हां तो क्यों? कौन से वो कारण है? हम देखते हैं कितने सारे कुमार इस बात में संघर्षरत है, पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपराध भाव, इससे ग्रसित है। सोचते हैं, जानते हैं कि बहुत ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, परंतु है नहीं। क्या करें? प्रश्न है, सबसे प्रश्न पूछते हैं, क्या किया जाए? परंतु ये पवित्रता या पवित्रता जन्म कहां से ले रही है, उसका विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम देख रहे, क्या हम खा रहे, क्या हम सुन रहे, इंद्रियों के द्वारा कौन सी चीजें अंदर जा रही है? जब तक इसका ध्यान नहीं, तब तक वो पवित्रता खंडित होती रहेगी। तो पवित्रता, परिवर्तन, और फिर है परिपक्वता, फॉर्मनेस कहो, मैच्योरिटी कहो, सब कुछ होगा इस परिवर्तन के मार्ग में, इस पवित्रता के मार्ग में, इस धर्म सत्ता की स्थापना के मार्ग में। सर प्रकार के सितम, ग्लानी, अपोजिशन, विरोध, सब कुछ होगा, परंतु जितनी जितनी आत्मा सहन करेगी उतना ही शक्तिशाली बनेगी, और जितना इसमें अपोज होगा उतनी ही धारणा की शक्ति भी बढ़ेगी। सभी धर्म स्थापकों ने अगर देखो तो कितना सहन किया, एक एक धर्म की स्थापना देखो तो कितना उसमें अत्याचार हुआ है उनके साथ। इस्लाम धर्म की स्थापना देखो तो शुरुआत के उन दिनों में कितना कुछ सहन करना पड़ा सबको, कितनों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्रिश्चियनिटी की को धर्म को देखो, ईसाई धर्म में कितनों को सूली पर चढ़ा दिया गया। जीसस क्राइस्ट के जितने शिष्य थे लगभग उन सभी को अलग अलग देशों में अलग अलग रीति से यातनाएं पहुंचाई गई, बहुत ज्यादा यातनाएं। उनका संदेश प्रेम का था, धर्म का था। कहां सुकरात को जहर पिला दिया गया, कहां मंसूर को मार दिया गया, कहां बुद्ध को मारने की कितनी चेष्टाएं की गई, पागल हाथी छोड़े गए, कहां महावीर के कान में खील ठोक दी गई। जितने धर्म स्थापक हुए शायद ही कोई ऐसा होगा जिस पर इस समाज ने, इस संसार ने कलंक नहीं लगाए, ग्लानी नहीं की, निंदा नहीं किया, विरोध नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, सब कुछ किया, परंतु फिर भी वो पक्के रहे। आज जीसस क्राइस्ट के इतने बड़े बड़े चर्च है, परंतु वो जब था तब क्या था? Foxes have holes, birds have nest, but this son of man hath not where to lay his head. सबके लिए घर है, परंतु इस व्यक्ति के लिए, वो अपने लिए कह रहा है, मुझे लिए, मेरे लिए एक थोड़ी सी जगह भी नहीं है जहां मैं अपना सर रखकर सोऊं। वो जब था, तो बाबा कह रहे हैं कि जितने भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई है, सबने सितमगरों ने बहुत सितम किए, परंतु अपनी धारणा को नहीं छोड़ा। तो हम अपनी पवित्रता की धारणा को क्यों छोड़े? चाहे कोई कुछ भी करे, कितना भी प्रेशराइज करे, कितना भी प्रलोभन दे, कितने भी अत्याचार करे, या फिर अपने ही संस्कार, सबसे बड़ा विघ्न तो अपना ही है, अपने ही संस्कार हमें सताए। जब संकल्प कर लिया है कि यही मार्ग है और यही जीवन है, तो क्यों हम हार खाए? तीसरा है निर्मानता। निर्मानता किसको प्रत्यक्ष करेगी? गुणों को प्रत्यक्ष करेगी। तो ये सारी ही बातें हैं धर्म सत्ता की। फिर दूसरी सत्ता बाबा ने कही, वो कौन सी? राज सत्ता। उसमें भी कुछ पावरफुल पॉइंट्स है। सतयुग में धर्म और राज सत्ता दोनों ही हाथ में होगी। अभी धर्म और राज सत्ता अलग अलग है। धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, वहां पर ये दोनों ही सत्ताएं हमारे हाथ में होगी। आज बाप दादा अपने सर्व अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व अधिकारी अभी बाबा कह रहे तुम हो, अभी ये दो सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी, तो तब वो सत्ताएं होगी। अभी राजा होंगे तब राज सत्ता वहां होगी, अभी धारणा स्वरूप होंगे तब धर्म की सत्ता वहां हाथ में आएगी। तो राज सत्ता में कुछ और पॉइंट्स बाबा ने बताई है यहाँ पर। सबसे पहली धर्म सत्ता अर्थात अधिकारी स्वरूप, अथॉरिटी स्वरूप, अधिकारी स्वरूप, यह अनुभव हो कि सर्व अधिकार मेरे पास है, यह धर्म सत्ता। दूसरा स्थूल और सूक्ष्म जितनी शक्तियां हैं उनको क्या कर सके? जब चाहे तब यूज कर सके, कार्य में ला सके। और तीसरा हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण। आगे बाबा ने कहा है हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करने की विधि क्या है? यथार्थ विधि, करेक्ट मेथड। तो यहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण। चौथा स्वयं भी संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। पांचवा मात पिता समान पालना करने वाले, रूहानी पालना करने वाले। और छठवा अटल अखंड राज्य, अधीनता के संस्कार नहीं। पहले हम अधीनता की चर्चा करेंगे। ये अधीनता क्या है? इस ब्राह्मण जीवन में अधीनता, संस्कार्स ऑफ डिपेंडेंसी, किस किस पर हम अधीन है? अभी सुनाया कुछ अधीनता के संस्कार है। एक तो शारीरिक अधीनता, उसमें क्या क्या, जैसे कि खाना पीना, ये तो है। और शारीरिक अधीनता में कोई मेरा ध्यान रखे, और उसकी वास्तव में कभी कभी आवश्यकता भी होती है जब बीमार पड़ते हैं, जब थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो शारीरिक अधीनता। पर जितना हो सके निराधार रहे, किसी पर भी अधीन नहीं, ना तो बेटे पर, ना तो बेटी पर, ना तो किसी संबंधी पर। वो मेरी पालना करे, पालना बहुत ले चुके हैं, अब क्या करना है? देना है। लेने की इच्छा, लेने की आकांक्षा, कामना दुखी करेगी। जितनी ज्यादा इच्छा उतना ज्यादा दुख। मैथमेटिक्स है, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतने ज्यादा दुख। तो फिजिकली भी जितना हो सके इंडिपेंडेंट। दूसरी अधीनता है बौद्धिक अधीनता, इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी। उसमें क्या जो भी महत्वपूर्ण चिंतन करना है या इंटेलेक्चुअल काम है वो दूसरों को सौंप देना, या दूसरों का आधार लेना उसके लिए, या जीवन में कुछ निर्णय लेना है तो उसके लिए भी दूसरों पर, दूसरे की बुद्धि पर निर्भर कि इसको पूछेंगे, ये जो कहेगा वो। बाबा ने तो वैसे कभी कहा है जब हार हो जाए तब किसी से मदद लो, पर वो हेल्प फॉर हेल्प होगी, उसकी मदद नहीं ले सकते, करके सहयोगी आत्माओं की मदद लो। पर वो भी संस्कार ना बना दो कि बस मदद ही लेते रहे हर बार। इसके लिए वो भी एक सूक्ष्म डिपेंडेंसी है, हमें अपने निर्णय खुद लेने हैं। हर चीज में निर्णय लेने के लिए दूसरों के पास नहीं जाना है। बाबा सामने है, मैं सामने हूं। इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी। और सबसे बड़ा जो डिपेंडेंसी है वो है इमोशनल डिपेंडेंसी, भावनात्मक अधीनता। वो क्या होती है? दूसरे क्या सोचते हैं और दूसरे मेरा केयर करे, भावनात्मक मुझे मान दे, सम्मान दे, आदर करे, और मेरी बात को समझे, मुझे समझे, मैं क्या हूं इसको समझे। ये जो भावनात्मक अधीनता है, इमोशनल डिपेंडेंसी, बहुत कमजोर बना देती है आत्मा को। इसके लिए हम भावनात्मक परिपक्वता भी हमारे अंदर हो। अगली है फाइनेंशियल, जितना हो सके आर्थिक रीति से भी, जो बाहर रहते हैं सेवाधारी है, अपने आप को आर्थिक रीति से भी क्या करे, इंडिपेंडेंट रखे। किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, मांगना ना पड़े किसी से। तो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक है फिर सोशल डिपेंडेंसी, मुझे इनवाइट करे, मेरे से बात करे, उद्घाटन कराने के लिए बुलाए। तो ये सारा जो है ना, एक सोशली जैसे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। वैसे तो मनुष्य जो है डिपेंडेंट ही है पूरा जीवन, परंतु जितना हो सके इस अधीनता के संस्कारों से स्वयं को हमें मुक्त करना है। फिर है स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी। वो क्या है? आध्यात्मिक। मेरे लिए योग कर दो और क्लास और सकाश और क्या, मेरी गुहार कर देना बाबा से, और आपका कनेक्शन अच्छा है बाबा से, बाबा से थोड़ा मेरे बारे में कुछ कह देना। और आध्यात्मिक अधीनता, जब योग का प्रोग्राम बनेंगे तब योग करेंगे, जब योग भट्टी का प्रोग्राम बनेंगे तब भट्टी करेंगे, और जब समस्या आएंगे तब करेंगे। नहीं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक अधीनता। तीव्र पुरुषार्थियों का संग मिलेगा तब कहीं जाके अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जब मधुबन में जाएंगे तब पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, दीदी कोई योग कराए, क्लास कोई अच्छी करा दे, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। इस पुरुषार्थ के लिए अधीनता। बौद्धिक अधीनता में और एक चीज है, चिंतन के लिए अधीनता। हमारे लिए कोई दूसरा चिंतन कर दे, हम नहीं कर सकते, दूसरा कोई करके दे रेडीमेड चिंतन, तो ये भी एक अधीनता है। बाबा ने कहा अधीनता के संस्कारों को समाप्त करो, कभी अधीन कभी अधिकारी, ये अटल अखंड राज्य नहीं है। तो धर्म सत्ता की छह निशानियां बताई है, छह बातें। पहली, धर्म सत्ता अर्थात अधिकारी स्वरूप। अच्छा, राज्य, सॉरी राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी स्वरूप, पहली पॉइंट। दूसरी, सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों को जब चाहे तब कार्य में लगा सके। स्थूल शक्ति भी और सूक्ष्म शक्ति भी, दोनों को जब चाहे तब कार्य में लगा सकना। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कार्य करने वाले। चौथा, स्वयं भी संपन्न और दूसरे भी संपन्न बनाने वाले। स्वयं में भी सुख शांति आनंद प्रेम सारे गुण, और जिसमें है वही दूसरों को संपन्न बना सकता है। पांचवा है रूहानी पालना। अब यहां थोड़ा रुकते हैं। रूहानी पालना अर्थात क्या? आत्माओं को रूहानी पालना, स्पिरिचुअल सस्टेनेंस कैसे दे? हमने बहुत ले लिया है, मधुबन से लिया है, दादियों से लिया है, बड़ों से लिया है, दीदियों से लिया है, दादाओं से लिया है, बाबा से तो लिया ही है। अब क्या करना है? देना है। तो कैसे दे ये रूहानी पालना? ज्ञान से दे, और किससे दे? संपूर्ण स्नेह से। आत्माओं की पालना हम कैसे करें? ज्ञान से, स्नेह से, और उनको टाइम देना, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा उनको टाइम देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अपनेपन की फीलिंग देने से। कहा ना बाबा ने, तीन रीति से और तीन रूपों से उनकी सेवा करनी है। कौन सी तीन रीति? ज्ञान, शक्ति और प्रेम। ज्ञान में स्थिति, प्रेम में स्थिति, शक्ति में स्थिति। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। उनको क्या अनुभव हो, हम लवफुल संपर्क में उनको लाना है। एक बहुत सुंदर शब्द बाबा ने प्रयोग किया, लवफुल संपर्क में उनको लाना है। उनको लगे ये हमारा असली परिवार है, यह हमारी गॉडली फैमिली है। मनसा वाचा कर्मणा लवफुल पावरफुल और नॉलेजफुल। लॉ लव में समाया है। आत्माओं की पालना कैसे करेंगे? ज्ञान से, प्रेम से, शक्तियों से, और कैसी पालना करेंगे आत्माओं की? हमारे सामने बहुत सारी, यहां पर भी बहुत लोग घूमने, टूरिस्ट आते हैं, सेंटरों पर आते हैं, सब जगह आते हैं। उनकी हमें पालना करनी है। कैसे? खुशी देकर, उनको खुशी देकर, खातरी कर कर, और उनको क्या हो जाएगा आज की मुरली से? वो क्या समझे कि ये हमारे कौन है? इष्ट देव है, हमारे पूर्वज है, श्रेष्ठ हमारे पूर्वज है एक। और क्या समझे? उन्नति का साधन यही है, सच्चा प्यार। अगर जीवन का मिलना है तो इन्हीं से मिलना है, प्रेम के सागर में, अथाह प्रेम की उनको अनुभूति हो, योग्य वो आत्माएं बन जाए। जैसे बच्चा होता है, उसको कोई पालना करता है तो वह हिम्मतवान बन जाता है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। उसी तरह हम उनको क्या दे दे? शक्ति दे दे, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना दे, उनको राह दे, गाइडेंस करे, मार्ग दिखाए। ये हमारा काम है। यदि हम खुद ही भटके हुए हैं, यदि मन में खुद ही हलचल है, खुद ही उलझन है, क्या करना और क्या नहीं करना ये हमें ही पता नहीं, तो हम दूसरों को मार्ग कैसे दिखाएंगे? हमें पालना करनी है आत्माओं की। कितनी ऊंचा ये कॉन्सेप्ट है, आज तक किसी ने ये बातें नहीं बताई है, किसी भी धर्म में ये बातें नहीं है कि तुम्हें दूसरों की पालना करनी है, रूहानी पालना करनी है आत्माओं की। और बाबा यहां राज सत्ता की बात कर रहे। राजा जो होता है, अच्छा राजा, उसके कौन से गुण होते हैं? वो पालना करता है अपनी प्रजा की, और साहस होता है, शक्तिशाली होता है, डिसीजन लेता है खुद, बुद्धिमान होता है, प्रजापालक, समदर्शी, और क्या होता है? अपनेपन की अनुभूति कराता है, और प्रजा का दुख अपना दुख समझता है, प्रजा से बहुत प्यार होता है उसको। इसके लिए बाबा ने कहा, राज्य में आने वाले हो या राज्य करने वाले हो, राज्य करने वाले हो या राज्य देखने वाले हो। विदेशियों से भी पूछा बाबा ने, राज्य देखने वाले तो नहीं हो केवल, तो राज्य करने के लिए प्रजा भी बनानी पड़ेगी। तो हम राजा हैं, राजा के संस्कार अपने अंदर धारण करने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, ऑफिसर्स, एचआर, डायरेक्टर्स, तब राजा थे पुराने जमाने में। तो हर एक को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर बनना है पहले, तो तो राजा बनकर आत्माओं की पालना करनी है। और कोई विधि पालना करने की? और क्या करेंगे पालना करने के लिए? ब्रह्मा भोजन, स्नेह मिलन करना, ब्रह्मा भोजन करना, और बुलाना उसके लिए टोली, टोली से पालना, और क्या, गेट टुगेदर, वही स्नेह मिलन, लव गैदरिंग। और क्या करेंगे? आत्माओं की पालना कैसे करेंगे? एक तो वो आत्मा है जो ज्ञान में नहीं है, एक वो आत्मा है जो पहले से ज्ञान में है। ये दो कैटेगरीज है। जो रोज सेंटर पे आते हैं उनकी पालना कैसे करेंगे? ज्ञान में नवीनता लाने से। मुरली जो है, अलग अलग रीति से मुरली का चिंतन, मनन, अध्ययन, उनको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ज्ञान में और योग में, सेवा में, ये उनकी पालना है। वो सेवा फिर स्वतः ही करेंगे। ऐसा क्या करे कि जिनमें सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल एंथुजियास्टिक, इतना भर जाए उमंग से ज्ञान में और योग के लिए। उसमें नवीनता लानी पड़ेगी, रचनात्मकता लानी पड़ेगी। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे मुरली पढ़ने की अलग अलग विधि, किस किस विधि से मुरली पढ़ी जाए। लगभग 26 ऐसी अलग अलग पॉइंट्स निकाली थी। कभी कोई शब्द ले ले और उसकी गहराई में जाए, कभी कोई वाक्य ले ले और उसकी गहराई में जाए, सेंटेंस मेथड, वर्ड मेथड, अलग 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 अलग, कभी उसका कॉन्ट्रास्ट करे, संसार क्या कहता है और बाबा क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी, कभी उसको विजुअलाइज करे, कभी उसकी ड्रिल बना दे, कभी स्टोरी कर दे उसकी, अलग अलग कुछ भी करो, परंतु उन स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस मुरली में। नहीं तो वही मुरली, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने के लिए, सतयुग आ रहा है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, सेवा भी करनी है, दिव्य गुण तो धारण करने ही है। तो वही वही सुन के उसी रीति से सुनकर वो सुन हो जाता है। जब तक नवीनता नहीं है तब तक वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। हम भी उसे अलग अलग रीति से पढ़े, अलग अलग रीति से चिंतन करें, उस पर मनन करें, उसकी गहराई में जाएं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, इस ज्ञान को भी ऊपर ऊपर से समझने में कोई मजा नहीं है। इस ज्ञान की डेप्थ में, बाबा ने ही कहा है मुरलियों में, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, एकांत में बैठो, स्वयं से बातें करो, पॉइंट्स निकालो। कल भी मुरली में था, पॉइंट्स नोट करो और फिर सुनाओ, दोहराओ, क्योंकि माया भुला देती है। तो राजसत्ता में एक क्या है, रूहानी पालना करनी है। जितने बड़े बड़े राजा आज तक हुए हैं, सम्राट, राजा, राजाधिराज, छत्रपति, ये जितने हुए हैं बादशाह, उन सभी में एक संस्कार था अपनी प्रजा की पालना का। प्रजापालक थे सभी। तो ये समझना कि विश्व की सारी ही आत्माओं की हमें पालना करनी है, ये राजा का गुण है। ये राजसत्ता धारण करनी है अभी। तो राजसत्ताधिकारी अर्थात सर्वाधिकारी स्वरूप पहला, फिर से दूसरा जब चाहो तब अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्ति को यूज करने वाले, तीसरा विधि पूर्वक लॉ एंड ऑर्डर से यूज करने वाले, चौथा संपन्न स्वयं और दूसरों को भी, पांचवा रूहानी पालना, और छठवा अधीनता समाप्त। छह बातें हैं। छह बातों में जो लास्ट की दो पॉइंट्स है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहां कहां मैं अधीन हूं, डिपेंडेंसी की, मेरे कौन से संस्कार है, कौन सी सूक्ष्म इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है दूसरों से, और मुझे पता है वो पूर्ण नहीं होगी, फिर भी है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। ये स्वयं को चेकिंग करने की पॉइंट है। और रोज अमृत वेले बहुत सारी आत्माओं को इमर्ज करना, विश्व की सारी आत्माओं को इमर्ज करना, और सोचना कि इन सब की मुझे पालना करनी है, यहां तक कि मुझे सताने वाले, दुख देने वाले, सबकी, सब जितनी संसार में आत्माएं हैं, सीनियर जूनियर से लेके हमारे सब, इन सभी की मुझे पालना करनी है, सभी को सकाश। ये एक विधि है स्वयं को थोड़ा सा डिटैच करने की भी। तो ये था राजसत्ता, दूसरा था धर्मसत्ता, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी पवित्रता की। इस पवित्रता की शक्ति को हमें धारण करना है। फिर बाबा ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, वो दूसरी मुरली से है, 73 की वो मुरली है, 2 अगस्त 73 की। एक तो विधि के लिए, एक सेवाओं की तीन विधि और तीन रूप, पावरफुल स्टेज की परिभाषा दी है और परफेक्ट स्टेज की भी परिभाषा दी है। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे। कौन सो इफेक्ट? पहला संकल्प, दूसरा शरीर, तीसरा दूसरी आत्माओं के वाइब्रेशंस और चौथा वातावरण, वायुमंडल। इन सभी इफेक्ट से परे। तो एक अभ्यास ये भी लेना है कि मैं परफेक्ट यदि हूं तो कोई भी इफेक्ट मुझे नहीं हो सकता है। बी परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे मेरा पिता परफेक्ट है वैसे तुम भी परफेक्ट बनो, ऐसा बाइबल में एक जगह लिखा है। तो कौन मुझे प्रभावित करता है? क्या वो आत्मा है? क्या वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है? यदि परफेक्ट बनना है तो एक संकल्प रखना है कि मुझे किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है, प्रभावित नहीं होना है, नो इफेक्ट। एक दूसरी बहुत अच्छा प्रश्न बाबा ने रिस्पेक्ट का किया है कि यदि हम जिन्हें ज्ञान सुनाते हैं, यदि नॉलेज के प्रति उनको रिस्पेक्ट हो जाए तो नॉलेजफुल जो है सुनाने वाला उसके प्रति भी रिस्पेक्ट होगा। इसमें और एक सूक्ष्म बात यह भी है कि नॉलेज सुनाने वाले में यह अहंकार भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो उस नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट है, और नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट अर्थात भगवान के लिए रिस्पेक्ट। तो इनडायरेक्टली भगवान के लिए रिस्पेक्ट हो रहा है, इसलिए उसका इनडायरेक्टली मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो जितना नॉलेजफुल उतना ही, जितना नॉलेज को रिस्पेक्ट उतना ही वो नॉलेजफुल जो है उसको भी रिस्पेक्ट देंगे। फिर बाबा ने यहां पास होने की बात कही है, हर सब्जेक्ट में पास होने की विधि क्या बताई? एक तो नॉलेज में पास अर्थात लाइट माइट की स्थिति रहेगी और रिस्पेक्ट, और योग में पास अर्थात योग की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। एक तो जो परिस्थिति आने वाली है वो पहले ही पता चल जाएगी योग की स्थिति से। दूसरा हर संकल्प समर्थ होगा, माया जो पुराने संस्कार है समाप्त हो जाएंगे, विघ्न नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। एक हम छोटी सी कमेंट्री करेंगे और उसके बाद, कमेंट्री के बाद 2003 की एक मुरली है, 11-15 नवंबर 2003। उसमें बाबा ने पवित्रता के विषय में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट वज्र गंभीर महावाक्य उच्चारण किए हैं। वह वज्र गंभीर वाणी पवित्रता के विषय में, उन महावाक्यों को भी सुनेंगे। तो सभी पहले अलर्ट होके बैठेंगे। भ्रुकुटी के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक तेजोमय पुंज हूं। संपूर्ण पवित्र एक परम पूज्य आत्मा लाइट का क्राउन धारण की हुई आत्मा, तपस्वियों में महातपस्वी, ऋषियों में राज ऋषि, पवित्र आत्माओं में भी परम पवित्र, ऐसी मैं अति पावन अति पुनीत आत्मा हूं। अपने फरिश्ते रूप को धारण कर, अब चल रही हूं ऊपर, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, और पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। बाबा की दृष्टि मुझ पर है, और बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे, संपूर्ण राज्य सत्ताधारी भवा, संपूर्ण धर्म सत्ताधारी भव, उन रूहानी नैनों से अविरल शक्तियों की धाराएं मुझ पर पड़ रही है। मैं राज्य सत्ताधारी आत्मा देख रही हूं अब संसार को, संसार की सभी आत्माएं मेरी आंखों के सामने हैं। मेरी शक्तिशाली दृष्टि से सभी आत्माएं अधीनता के संस्कारों से मुक्त हो रही है। इन सभी आत्माओं को मुझे रूहानी पालना देनी है। प्रेम की पालना, मैं धर्म सत्ताधारी आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं। मेरी आंखों के सामने मैं देख रही हूं सृष्टि का यह गोला घूम रहा है, और मेरी दृष्टि पड़ते ही यह पतित सृष्टि पावन हो रही है। विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माएं मेरे इन किरणों को पाकर शांत और शीतल हो रही है। विकर्मों के बंधनों में बंधी आत्माएं मेरी इन पवित्र रश्मियों को पाकर बंधनों से छूट रही है। देख रही हूं यह दृष्टि बाधित आत्माएं मेरी दृष्टि से, मेरी भ्रुकुटी से निकला हुआ तेज पुंज, यह पवित्रता की अविच्छिन्न धारा है, उन्हें तीसरा नेत्र प्रदान कर रही है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। विश्व की यह सेवा कर फिर से बाप दादा के सम्मुख हूं। और बाबा से आज सूक्ष्म वतन में यह संकल्प करती हूं, आज से मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि से वृत्ति से संपूर्ण पवित्रता को मैं धारण करती हूं। और बाबा के वह महावाक्य मुझे सुनाई दे रहे हैं जो कभी बाबा ने पवित्रता के विषय में कहे थे, उसे एक एक वाक्य को मैं अब सुनती हूं।
बाहर की।